यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी सूरत पूरी हुई। अब आगे एक सूरत, सूरत सबा के नाम पे, यानी आप देखिए कि औरतों के नामों में अगर देखें तो सूरत मरियम पड़ी, सूरत निसा भी कुछ फेमिनिन नाम था, और सूरत सबा भी एक कौम जहाँ मलका भी थी सबा नाम की और एक इलाका था, उसकी कहानियाँ इसमें। टोटल 54 आयतें हैं इसकी। सबसे पहले दो आयात में अल्लाह ताला की तारीफें हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाती व मा फिल अर्ध। यहाँ ज़रा सा रुकिए, हमने बात की थी ना कि हर तकरीबन 7.5 सुपारों के बाद जो सूरत शुरू होती है वो अलहम्द से होती है, ये उसकी दलील है। पहले सूरह फातिहा थी, फिर सूरत अलनाम थी तकरीबन 7वें पारे और 8वें के बिटवीन, फिर सूरत कहफ थी 15वें पारे पे, और अब आपको एक और जगह मिल गई। तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसका है आसमान और ज़मीन में सब कुछ, और उसकी तारीफें यहाँ भी और आखरत में भी हैं, और क्यों ना हो, इसलिए कि उसका इल्म पुख्ता, वो तो हर ज़मीन के अंदर की चीज़ जानने वाली और निकलने वाली को भी जानता है, और उसको आसमानों की भी खबरें हैं। फिर आगे आयत नंबर 3 से 6 में कयामत बरपा होना क्यों ज़रूरी है, इसके दलाइल दिए गए, और दलाइल में क्या है, लियज़ियल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, ताकि अल्लाह जजा दे उन लोगों को जो ईमान लाकर अमल साले करते हैं, और उनके लिए है बख्शिश और इसके करीम है, ये है बड़ी वजह। और इसके ऑपोजिट वल्लज़ीना सऊ फी आयातिना, सब अच्छे तो नहीं होते, कुछ हमारी आयतों को बिगाड़ने या उसके खिलाफ अमल करते हैं कि वो हमें आजिज़ करें, अल्लाह कहते हैं इनको भी क़यामत वाले दिन ज़रूर पकड़ना है। तो दो वजूहात है क़यामत के आने की, अच्छे लोगों को अच्छे कामों के बदले मिले और बुरे काम करने वालों को उस बुराई का बदला मिले। आगे आयत नंबर 7-9 में मुनकरीन आखरत के लिए धमकी है, और वो धमकी क्या है कि एक तुम नहीं मानते, तुम्हें दुनिया में ज़मीन में खसफ करके या तुम्हारे ऊपर आसमान के टुकड़े डालकर भी अल्लाह यकीन दिला सकता है। क्या नहीं कभी जलजला आया, कभी आसमानी बिजली नहीं गिरी, क्या इंसान के ऊपर कभी कोई ऐसी आफत नहीं आई जिसको आप कोई क्लैमिटी कह दें, हर साल कोई ना कोई आफत तो आई होती है। यानी ये दुनिया में छोटी छोटी क़यामतें बरपा करके अल्लाह ताला उस बड़ी क़यामत का यकीन दिलाते हैं। इसके बाद सूरत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के चुने हुए नबी थे, उन पर कुछ फजल और उनकी खूबियाँ, कुछ बुजुर्गी की बातें आयत 10 से 11 में हैं, और बेशक हमने दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को फजल, और क्या कहा, या जिबालू ओ पहाड़ो अव्वी भी माँ हो, अव्वी भी वही लफ्ज़ है जिसमें अव्वाब छुपा हुआ है, तुम भी इसके साथ तौरात पढ़ो। हज़रत दाऊद की कह लीजिए आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी, जब वो जबूर की राइम्स पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि पहाड़ भी उनके साथ बोल रहे हैं, परिंदे भी थे, और अगर परिंदे भी उनकी बात पे वजद में आ जाते थे कह लें। अब ये कैसे था, क्या था, इस वक्त आपका मेरा इससे ताल्लुक नहीं, बस ये कीजिए कि अपने अपने कुरान पढ़ने को हम ठीक करें। आज भी अच्छी किरत में कुरान सुनकर दिल पर एक असर होता है। फिर दूसरी बात उनको जो अल्लाह ने दी थी वो क्या थी कि वह अलन्ना लहुल हदीद, लोहा उनके हाथों में आकर ऐसे हो जाता जैसे मोम है, जिधर चाहते मोड़ लेते। उसी लिए फिर कहा कि उसे साबिगात व कद्र इनफे सर्द, यानी वो उससे चेने बनाते, जंजीरियाँ, बड़ी बड़ी देगें बना लेते, वाह मलु सालेहन। असल ये बात है, आज भी इंसानियत को अल्लाह ने लोहा और फौलाद मोल्ड करने का फ़न और हुनर सिखाया, उससे वो क्या बना रहा है, वेपन्स, इंसानियत को तकलीफ़ देने वाली चीज़ें। हज़रत दाऊद ने अपनी खूबियों को अच्छे कामों का ज़रिया बनाया। फिर इसके बाद इनके बेटे का तस्करा है आयत 2:12 से 14 में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की इनायात। आप देखिए कि इन बाप बेटों का तस्करा कम आता है, लेकिन जहाँ भी आता है इकट्ठा आता है। तो हज़रत सुलेमान की खूबियाँ क्या थी कि वो हवाओं पर सफ़र कर लेते थे, महीने का सफ़र वो एक दिन रात में कर लेते। फिर इसी तरह जिन्नात उनके ताबे थे, बैतुल मक़दस की तामीर जिन्नात के थ्रू करवाई गई थी। फिर इसी तरह बड़े महल और बड़ी बड़ी तमासील, जिफान, बड़ी बड़ी देगें जो अपनी अपनी जगह पे पड़ी रहती थी, ये बड़े बड़े भारी काम करवाते थे। आपके मेरे लिए इसमें जो अमल का नुक्ता है वो क्या है, ए मलू अमल करो, आल दाऊद शुक्र, اے داؤد کی آل کے لوگوں شکر کرو، وقلیل من عبادی الشکور. شاید کسی آیت کو پڑھ کر جو شرمندگی ہو کسی کو، وہ یہ آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. تو آج ایک دعا کریں، اللہ مجھے قلیل میں کر دے. آپ دیکھیے کہ قرآن میں اکثر اچھی خوبیوں والے لوگ تھوڑے ہی دکھتے ہیں. تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں قلیل میں کر دے. پھر اس میں آگے فلما قدین علیہ الموت میں حضرت سلیمان کی موت کا تذکرہ. اصل میں لوگوں میں یہ خیال آ گیا تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں. اللہ نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان جو بیت المقدس بنوانے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے تھے اپنے عصا پہ ٹیک لگا کے، ان کو موت دے دی، لیکن جنات کو خبر بھی نہ ہوئی، وہ بیت المقدس بناتے رہے. ابھی وہ پورا نہیں ہوا تھا، اللہ کے حکم سے وہ بنا رہے تھے. ان کو نہیں پتا کہ جس کے ڈر سے بنا رہے ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن آخر میں پھر وہ جس کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں، دیمک، وہ اس عصا کو لگی، وہ لکڑی گھلی، جب وہ لکڑی گری تو یہ بھی گر گئے، تو جنات بھاگ گئے. کیا پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سر پہ کھڑے رہو تو وہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں، اور چھوڑ دو تو نہیں. لیکن اصل میں اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جنات کو غیب نہیں پتا. اور دوسری بات ہے، وقت نبی بھی آ جائے، کوئی بھی ہو، کل نفس ذائقت الموت. جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد ٹلتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد قوم سبا کی تباہی ہے 15 سے 19 میں، 15 to 19. اور یہ ہے وہ حصہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت سبا ہے. بیسیکلی اللہ نے اس قوم کو بہت فراخی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال بنا دیا. لقد کان علی سبائیں فی مسکنہم آیا، جنتانی آئی یمین و شمال، باغات تھے. اور کہتے ہیں کہ اتنا پھل ان میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص سر پہ خالی ٹوکری لے کر باغ کے ایک سرے سے دوسرے میں جاتا تو خود سے پک پک کے گرے ہوئے پھلوں کی وجہ سے ٹوکری بھر جاتی. لیکن انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے جو باغ بڑے اچھے میٹھے مزیدار پھل اگاتے تھے اس کی جگہ جھاڑ پھونک اور اصل اور اوکل خمت صدر قلیل یہ ہو گیا. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی ناشکری کی، ان کو جزا دی، اور ہم سارے ناشکروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اور پھر ان کی جو بستیاں تھی اس کو ایک کہہ لیجئے کہ جائے عبرت بنا دیا. آپ اور میں بھی ذرا اس پہ غور کریں، ہمارے ان شہروں میں کتنی رونقیں تھیں، کتنی خوبصورتیاں تھیں، لیکن لوگوں کی غلط چیزوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو یہاں بھی اپنے لیے محاسبے کا نقطہ بنائیں، کیا آج ہمارا کوئی غلط عمل یا ہماری کوئی ناشکری ہمارے ملکوں میں بے برکتی کا ذریعہ تو نہیں بنی ہوئی؟ پھر آگے ابلیس کی بات صحیح ثابت ہوئی، 20 سے 21. وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ ابلیس ظَنَّهُ، بے شک سچا پا لیا ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان. اور کیا ہوا، وہ اس کی پیروی کرنے لگے. ابلیس نے آدم علیہ السلام سے جو حسد کیا تھا تو اس کے جواب میں کیا کہا تھا، کہ میں سب کو بہکاؤں گا، ہاں تیرے مخلص بندے نہیں میری باتوں میں آئیں گے. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو ابلیس کی باتوں میں آگے، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے پاس اخلاص نہیں تھا. اب دیکھیے کہ ابلیس کا گمان کیا تھا، ابلیس کا گمان اور انسان اس کی اطاعت کر کے اس کو سچ کر دکھائے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ شیطان کا انسان کے دل میں صرف بات ڈالنا ہوتا ہے، باقی سارے کام انسان خود کرتا ہے، انسان مان لیتا ہے، وسوسہ دیتا ہے. یعنی شیطان کو جتنا اختیار ہم پہ دیا وہ صرف وسوسہ ڈالنے کا ہے. آپ اچھے صبح اٹھے ہیں بس دل میں خیال آ رہا ہے، یا احساس کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اچھا آپ اگر بہو ہیں نا تو آپ کو کہے گا کہ ساس کا موڈ بگڑا ہوا ہے، یا صبح سے غصے میں اماں کرینکی ہیں. اچھا اور ساس بیٹھی ہے نا تو ان کے دل میں بہو کے لیے ڈالے گا، یہ بیگم صاحب اٹھ کے آ گئی 9 بجے، اچھا سارا کام تو میں نے کر لیا، اب یہ آ کے پوچھ رہی ہیں کوئی کام ہو تو بتائیے. یہ ہے شیطان، شوہر کے دل میں بیوی، بیوی کے دل میں شوہر، حتیٰ کہ بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے ڈالتا رہتا ہے، یہ میرے دشمن ہے، یہ مجھے کیوں یہ کہتے ہیں، یہ روک ٹوک کیوں کرتے ہیں. تو شیطان صرف ایک پتھر پھینکتا ہے، باقی کام انسان خود کرتا ہے. اس پہ حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے 8902. آپ نے فرمایا ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے، और एक रावी के अल्फाज कहे हैं कि सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने शैतान के मामले को वसवसे की तरफ लौटा दिया। अब सवाल है कि अगर कोई गलत वसवसा आए तो क्या करें? आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित तामाती, कभी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, ये दुआएं पढ़िए ताकि शैतान आपसे भाग जाए। फिर उसके बाद माबूद वो है जो रिस्क भी देता है। 22 से 27 में शिर्क का रद्द किया जा रहा है कि तुम तो अपने खुदाओं को खुद खिलाते हो। तुम ये बताओ कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनके बारे में ये गुमान करते हो कि ये हमारे दाता हैं, ये राजिक हैं, ये खिलाते हैं पिलाते हैं, क्या वो तुम्हें कुछ देते हैं? उनको पता है इधर तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? असल बात यह कि शिर्क की तो कोई दलील भी इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा इस नबी को मान जाओ। कौन सा नबी? जो तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। 28 आयत सूरह सबा को लिख लीजिए रेफरेंस में, इस बात की दलील है कि नबी सल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। वमा अरसलना का इल्ला का फतलिन्नासी बशीरम व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून। अब सवाल तो यह है कि वो तो सारी इंसानियत के लिए आए, ये बात इंसानों को कौन बताएगा? हम मुसलमान बताएंगे, और हम मुसलमान तो खुद भी नहीं पूरी जानते बात, तो उनको क्या बताएंगे? तो ये आपके मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हमने अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को नबी सल्लम के बारे में कुछ बताना है। फिर इसके बाद क़यामत के बातें और अजाब की बातें करते थे, तो आयत 29 से 30 में अजाब का वादा कब पूरा होगा? हर वक्त ये सवाल करते थे, मता हाजल वादू, बताओ भाई कब होगा ये वादा पूरा? इन कुंतुम सादिकीन, इत्तबार नहीं था ना, यकीन नहीं था, क्योंकि देखिए नस्ल दर नस्ल गलत बात को सुन सुन के वो इतने सुन्न हो चुके थे कि नबी सल्लम की जुबान से ये सुनना के लोगों की आमद आएगी और हर बंदे को उसकी जजा या सजा दी जाएगी तो मजाक करते थे। अच्छा भाई कब आ रही है क़यामत? चल पड़ी है, कितनी दूर है? कुल लकुम मियाद यौमिल्ला यस्तस्ताखिरूना अन्हु साअतम वला तस्तकदिमून। का उसका एक वक्त है, पॉइंट ही टाइम है, जब आ गया तो एक सेकंड आगे से पीछे नहीं होगी। फिर आगे गुमराह कायदीन की पैरवी का अंजाम है। आयत 31 से 33 में, दुनिया में तो इंसान पूरी तरह आज़ाद है, जिसके पीछे चले जो चाहे वो कहे आप करें माने, क़यामत के दिन फिर उस पैरवी के इंजाम पे इख्तियार नहीं होगा। तो ये पूरी आयत इस बात की दलील है कि जिन्होंने अपने बड़ों के कहने पे इस किताब को छोड़ा, इसके बारे में बातें की, कल क़यामत के दिन वो सब उनसे दूर होंगे। और ये झगड़े हैं असल में, पीछे भी ऐसी आयतों पे हम बात कर चुके हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें सही लोगों के पीछे चलने वाला बनाए। मैं तो अपने बारे में भी आपसे कहती हूँ कि अगर बात सुन रहे हैं तो कान खोल कर सुनिए, दिल से तासुब निकाल कर सुनिए। वमा अलैना इल्लल बला, जो बात कुरान सुन्नत से समझ आती है उसको ले लें, जिस पे आपको शक हो उसकी दलील पूछिए। नाम तो हमारा मुसलमान है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसके बावजूद भी हमारे अकायद में कहीं कोई गलती रह जाए। फिर आगे खात्मे की तरफ सूरत जा रही है, तो चूँकि सूरत में एक पूरी कौम और एक मलका सबा का तذکرہ था, तो यहाँ अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या बहुत दौलत होना, यानी किसी के पास दौलत की कसरत का होना इस बात की दलील है कि अल्लाह उससे राजी है? तो ये नहीं है। 34 से 36 में, दौलत की फरावानी अल्लाह की रजा की अलामत नहीं है। अमूमन हम तो दुनिया में जिससे राजी होते हैं उसको बहुत देते हैं, और जिससे नाराज होते हैं उससे दिया हुआ भी ले लेते हैं। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते, अल्लाह इम्तिहान के लिए चूके दे रहे हैं इसलिए अल्लाह ताला सबको देते हैं। हाँ, कल क़यामत के बाद सिर्फ उनको देंगे जिनसे अल्लाह ताला राजी होंगे। फिर आगे अल्लाह ताला की कुर्बत माल और औलाद से नहीं, नेकियों से मिलती है। हाँ, माल और औलाद को नेकियां बना लें, उनको बाकिया तो सालेहात बना लें, तो वो तो सबसे प्यारा जरिया बन जाएंगे अल्लाह की कुर्बत का। आयत नंबर 37 से 39 में, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। आप और मैं इस पर अपना गौर व फिक्र करें, क्या मेरा माल मुझे अल्लाह के करीब कर, क्या मैंने अपनी औलाद की ऐसी अच्छी तरबियत की है और अपनी औलाद को ऐसा दीन दिया है कि वो मेरे अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाए? आज तक नहीं किया, तो अब करने की ज़रूरत है, अब कर लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और फिर इसके अंदर आप देखिए एक जुमला है, वो क्या है, वमा अन्फ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़लिफ़ुहु। क्यों डरते हो मेरे रास्ते में कुछ देने से, माल को, औलाद को मेरे रास्तों में लगाने से क्यों डरते हो? जो तुम दोगे ना, खर्च करोगे मेरे रास्ते में, सब तुम्हें वापस मिलेगा। इसको हमारे यहाँ एक टर्म से समझ लेते हैं, मनी बैक गारंटी। कभी कभी आप डिपॉजिट रखवाते हैं, बाद में वापस मिल जाता है। अल्लाह के साथ बंदे का मामला भी कुछ इसी किस्म का है। तो क्या पता चला कि खर्च करने से उसका मुतबादिल मिलता है। अल्लाह के रास्ते में आपका 1 रुपया लग रहा है, ये 1 डॉलर लग रहा है, ये 1 यूरो लग रहा है, 1 पाउंड लग रहा है, वापस मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात पता चलती है कि खर्च करने से मजीद मिलता है, अल्लाह बढ़ा के देता है। और सदका क़यामत के दिन की गर्मी से निजात का बायस है, इसकी दलील भी मौजूद है। ले लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता, दरगुजर करने और माफ़ कर देने से अल्लाह बंदे की इज्जत में इजाफा फरमाता है। और जो कोई अल्लाह की खातिर तवाज़ो इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला इसको रफ़त यानी बुलंदी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें कसरत से सदका करने वाला बना दे और इज्जत का सदका भी किया करें। कैसे? उन लोगों को माफ़ कर दें जो आपके बारे में गलत बातें करते हैं। क़यामत के दिन हर इंसान अपने सदके के साए में होगा। ज़रा सोचिए, इतनी गर्मी और एक अम्ब्रेला बन गई आपका वो सदका जो आपने किसी ऐसे मौके पे किया जिस वक्त आपका अपना भी बड़ा दिल था कि वो चीज़ आपके पास हो, लेकिन आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उसको किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें अच्छे कामों की तौफीक दे। इसके बाद आयत 40 से 42 में मुशरिकीन शयातीन की इबादत करते हैं, यानी हर बुत के पीछे कहते हैं शैतान होता है। जब कोई बुत को सजदा करता है ना, तो पीछे शैतान को होता है। इसी तरह बुत के अलावा किसी और को भी पूजेंगे तो भी यही होगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात की खबर देकर लोगों को वॉर्न किया कि शैतान जो तुम्हारा भी दुश्मन है, अल्लाह का भी दुश्मन है, तो तुम उसको नहीं अल्लाह को सजदा करो। लेकिन बात किसको समझ आती है? बस अल्लाह ही दिल खोले तो आती है। और जो चीज़ बचपन से सुनी होती है ना, उससे बंदा हटता नहीं है। इसीलिए फिर आयत 43 से 45 में मुशरिकीन की हठधर्मी का जिक्र है। कहते थे जो मर्जी कह लो हम तो नहीं मानेंगे, क्या हमारे बाप दादा गलत थे, ये थे वो थे, और कभी अल्लाह के नबी पे बातें छाड़ते। ये कैसा शख्स है कि युरीद व युसद्दकुम अम्मा कान याबुदु आबाकुम, ये ऐसा शख्स है जो तुम्हें उन तरीकों से हटा रहा है जो तुम्हारे बाप दादा से चलते आ रहे हैं। खैर, समझाने का दिलसोज असलूब आपको मिलेगा आयत 46 से 50 में कि छोड़ दो इनको, नहीं मानना, कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, बस एक बात पे कान लगा लो। यानी इतना खूबसूरत अंदाज़ है अरबी ग्रामर के एतबार से, जैसे आप अपने बच्चे को जो बात ही नहीं सुनना चाह रहा, स्टबन है और जवान हो रहा है और आपकी बात नहीं सुनता, आप उसे कहते हैं बैठो पहले मेरी बात गौर से सुनो, अकेले दो दो चार चार बैठ जाओ, फिर सुम्मा तफक्कर करो, फिर गौर करो। क्या माँ बी साहिबिकुम मिन जिन्ना, यहाँ नबी सल्लम को साहिबिकुम कहा गया, तुम्हारे साथी को कुछ जुनून तो नहीं है? क्या पता चला कि जब कोई आपकी बात ना सुन सके, आपकी बात के ऊपर कान ना रखे, तो फिर उसके दिल के तारों को छेड़िए। हम हर वक्त जो दलाइल देते रहते हैं ना, हलाल है, हराम है, गुनाह है, सवाब है, ये अच्छा अंदाज नहीं होता। थोड़ी बात करें बच्चों से भी या जिससे भी, जिसको भी आपने समझाना है, लेकिन दिल में उतरने वाली बात कीजिए। फिर आगे 51 से 54 में अजाब के आने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी। आज वक्त है, तौबा एक टाइम बाउंड चेक की तरह है, अगर डेट गुजर जाए तो वो कैश नहीं होता। अल्लाह ताला हमें आज ही अपने गलत कामों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।